दूसरा अध्याय देख रहे हैं और हम लोगों ने 11 से लेकर 25 श्लोक तक हमने देख लिया है। भगवान ने 11वें श्लोक से ज्ञान देना शुरू किया। अर्जुन का प्रश्न था कि मैं धर्म सम्मूढ़ हूं, मैं अभी समय मुझे क्या करना चाहिए ये बताइए। मगर भगवान को पता था कि ये जो अर्जुन है ये दुखी है अभी, और इसका दुख बिना आत्मज्ञान के नहीं जाएगा। इसलिए भगवान ने उसको सीधा उत्तर न देते हुए कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है युद्ध भूमि में, कर्तव्य तो यही है युद्ध करो, मगर ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने उसको आत्मा का ज्ञान शुरू कर दिया और उन्होंने आत्मा की नित्यता बताई है। 11 से लेकर 25वें श्लोक तक आप जितने भी श्लोक है उसमें देखिएगा कि उसमें केवल आत्मा की नित्यता, एक एस्पेक्ट ऑफ आत्मा को लेकर भगवान बढ़ रहे हैं। वो क्यों एक एस्पेक्ट लिया है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि आत्मा नित्य है, इसलिए तुम युद्ध करते जाओ, युद्ध करो, युद्ध करो। पहले उन्होंने कहा असोचाना अनुसोचत, जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, अनुसोच है, तुम खाली बार बार खाली उसी को सोचते जा रहे हो, इसलिए युद्ध करो। अच्छा, युद्ध करो का मतलब क्या हुआ? युद्ध करो का यह मतलब नहीं कि आप भी घर में जाके अब युद्ध करना शुरू कर दो, नहीं। अर्जुन की परिस्थिति क्या थी, रणभूमि में खड़ा है, अर्जुन का कर्तव्य क्या है, कर्तव्य को देखना है। हमारा क्या कर्तव्य है, जहां जहां भगवान कहते हैं युद्ध करो वहां वहां हमको अपना कर्तव्य देखना, मेरा कर्तव्य क्या है इस संसार में, वो करने को कह रहे हैं, युद्ध करने को नहीं कहते हमें। अर्जुन का धर्म, अर्जुन का कर्तव्य था कि युद्ध करे, इसलिए भगवान उसको कहते हैं युद्ध करो। बोलते पंडित लोग कभी भी जो है शोक नहीं करते, पंडित शोक क्यों नहीं करते, पंडित का मतलब जो आत्मज्ञानी है, शोक नहीं करते। और आपने भी बहुत सारी दलीलें दी हैं अर्जुन, तुम तो प्रज्ञावान, प्रज्ञावान की तरह आपने दलीलें दी हैं, तर्क दी हैं। तो पंडित जब नहीं शोक करते हैं, आत्मज्ञानी जब शोक नहीं करते तो तुम क्यों शोक करते हो, इसलिए युद्ध करो। ये जितने लोग भी सामने खड़े हुए हैं युद्ध भूमि में, ये पिछले जन्म में थे, अभी भी यहां खड़े हुए हैं और अगले जन्म में फिर ये जन्म लेंगे, इसलिए तुम युद्ध करो। देह का जन्म होता है, मृत्यु होती है, मगर जो देही है वो चलता रहता है, इसलिए तुम युद्ध करो। दुख उपाधि को होता है, आत्मा को नहीं होता है, इसलिए तुम युद्ध करो। सत का अभाव नहीं होता, सत तीनों काल में रहता है, और असत असत है ही नहीं, इसलिए तुम युद्ध करो। तो इस तरह से उन्होंने काफी जगह उन्होंने ये कहा कि आप युद्ध करते हुए चले जाओ। यह भी बताया कि आत्मा न तो कुछ करता है, न आत्मा के ऊपर कोई क्रिया की जा सकती है। आत्मा न तो कुछ करता है और न ही आत्मा के ऊपर कोई क्रिया की जा सकती है। तो अर्जुन तो ये सोच रहा था ना कि हम इन सबको मारेंगे। तो आत्मा की दृष्टि से तुम अकर्ता हो, एक तरफ उनको मारेंगे, उनके शरीर को मार सकते हो मगर उनकी आत्मा को नहीं मार सकते, आत्मा के ऊपर में कोई क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा ना कि उसको ऊपर दहन नहीं किया जा सकता, उसको पानी में भिगोया नहीं जा सकता, उसको शोषण नहीं किया जा सकता, उसको शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। ये सब उन्होंने भगवान ने दलीलें दी। उसके बाद में कई लोग कहते हैं 11 से लेकर 25वें श्लोक तक भगवान ने कई शब्द जो हैं दो बार कह दिए। क्यों दोहराया भगवान ने? उसको कहते हैं पुनरुक्ति दोष, पुनरुक्ति। ये चीज को एक बार कहना चाहिए, दो बार क्यों कहां दो बार कहा? तो कहते हैं नित्य वर्ड जो है भगवान ने 20वें श्लोक और 24 श्लोक में कहा है, नित्य वर्ड का दो बार यूज हुआ है। न जायते और अज, 20वें श्लोक में न जायते मतलब जन्म नहीं लेता, अज अज का मतलब भी जन्म नहीं लेता, एक ही श्लोक में दो वर्ड क्यों कहे? न म्रियते और उसके साथ में नित्य कह दिया 20वें श्लोक में, फिर कह दिया अविनाशी दो बार कहा 17वें श्लोक में और 21वें श्लोक में, अविनाशी दो बार वर्ड आ गया। उसी तरह सनातन और पुराण वर्ड ये भी आए हैं। तो इसके समझाने के लिए शंकराचार्य जी कहते हैं, आगे भी हमने कहा था, परंतु आत्म तत्व बड़ा दुर्बोध है। दुर्बोध है मतलब समझना बहुत मुश्किल है आत्म तत्व, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए बारंबार प्रसंग उपस्थित करके दूसरे दूसरे शब्दों से भगवान वासुदेव उसी तत्व का निरूपण करते हैं। एक ही चीज को समझाने के लिए वो बार बार जो है दूसरे दूसरे वर्ड से घुमा फिरा के फिर वहां पर लेके आते हैं। क्यों करते हैं? यह सोचकर कि भगवान सोच रहे हैं, यह सोचकर कि किसी भी तरह से अव्यक्त तत्व, अव्यक्त तत्व मतलब आत्मा, किसी भी तरीके से वो आत्म तत्व जो कि अव्यक्त है, कभी व्यक्त नहीं होता, कभी मैनिफेस्ट नहीं होता, उस अव्यक्त तत्व इन संसारी पुरुषों में, ये जो संसारी लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, बुद्धि गोचर हो जाए, बुद्धि में इनके आ जाए, पकड़ लेंगे, क्या होगा लाभ, क्या होगा पकड़ के? तो कहते हैं संसार की निवृत्ति का कारण हो जाएगा, आपकी संसार की निवृत्ति हो जाएगी। संसार की निवृत्ति, ये संसार आपको दुख दे रहा है, मतलब दुख से निवृत्ति हो जाएगी। अर्जुन को भी दुख दे रहा था, निवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। अब भगवान कहते हैं आत्मा की नित्यता बताने के बाद में भी उन्होंने बार बार कहा युद्ध करो युद्ध करो, मगर वो जो है अर्जुन बैठा ही रहा, शोक मग्न था, वो खड़ा नहीं हुआ युद्ध होने करने के लिए। अगर वो खड़ा हो जाता फिर बाकी की गीता नहीं मिलती हमें, बाकी की गीता नहीं मिलती हमें। अब वो कहते हैं चलो ठीक है, आत्मा की दृष्टि से बताने के बाद वो खड़ा नहीं हुआ, वन लेवल डाउन जीव की दृष्टि आ रही है, क्या है देखते हैं। 26वां श्लोक,
अथ चैनम नित्य जातम,
अथ चैनम नित्य जातम,
नित्यं वा मन्यसे मृतम,
नित्यं वा मन्यसे मृतम,
त तथापि त्वं महाबाहो
तथापि त्वं महाबाहो
नैवं शोचितुमर्हसि
नैवं शोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि।
संबंध भाष्य में शंकराचार्य जी लिखते हैं, औपचारिक रूप से आत्मा की अनित्यता स्वीकार करके ये कहते हैं, भगवान कहते हैं औपचारिक रूप से, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ आर्गुमेंट, दैट्स ऑल। भगवान ये नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि आत्मा नित्य नहीं है, कहते हैं तुम्हारा ये ख्याल है ना कि आत्मा अनित्य है, मरता है, जन्म लेता है, मान लेते हैं, ऐसा भी मान लेते हैं। बोले ऐसे मानने पर भी नैवम सोच तुम्हारा सी, फिर भी शोक नहीं बनता है, क्यों शोक करते तुम? अथ, अथ वर्ड जब यूज हुआ है इसका मतलब भगवान जो है थोड़ा सा ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एक टॉपिक थोड़ा सा बदल रहा है। आत्मा की चर्चा हो रही थी, अब जीव आत्मा के, जीव के लेवल पर भगवान आ रहे हैं, टॉपिक थोड़ा सा बदला, इसलिए अथ। महाबाहो, महाबाहो माइटी आर्म, मगर माइंड से दुर्बल, माइंड वीक था, अर्जुन रो रहा था, शरीर से बहुत तगड़ा मगर मन, मन से बहुत वीक था। अच्छा कौन किसको कंट्रोल करता है, शरीर मन को कंट्रोल करता है कि मन शरीर को कंट्रोल करता है? मन शरीर को कंट्रोल करता है। एक इमोशन उसके अंदर आया कि ये मेरे हैं, और वो महाबाहो रोने लग गया। बहुत अच्छा, भगवान कहते हैं कि तुमको इतना बताते जा रहे हैं, 25 श्लोक तक 14 श्लोक बोल दिए तुमको, तुम्हारा शोक ही नहीं खत्म हो रहा है, तुमको क्या शोक की आदत पड़ गई है क्या? शोक करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, ऐसा लगता है आदत पड़ी हुई है। कुछ लोग जो है ना बराबर सुखी रहते हैं, बराबर सुखी रहते हैं, कुछ भी हो जाए वो सुखी हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो बराबर जो है दुखी ही रहते हैं, कैसे? बिना किसी कारण के गुस्सा हो गए, गुस्सा आने से अपशब्द कह दिया, अपशब्द कहने के बाद में आपने दूसरे को दुखी कर दिया, दुखी करने के बाद में फिर वो बाद में जब वो चला जाता है फिर दुखी होते हैं, खुद दुखी होता है, मैंने यो क्यों कह दिया, रोते भी हैं, बोले तुम्हारा भी यही हाल है, तुमको इतने कारण हमने बता दिए कि तुमको शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम शोक करते जा रहे हो। नित्य जातम नित्य मन से मृतम, मान लें मन से, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि ये आत्मा जीवात्मा मरता है और जन्म लेता है, फिर भी शोक नहीं बनता। देखो जब आता है तो हम उसको कहते हैं जन्म हो गया ना, जब जीवात्मा आता है तो जन्म हो गया, जब वो जीवात्मा जाता है आप बोलते हो मृत्यु हो गई ना, वेरी गुड। तो भगवान कहते हैं देखो शरीर उत्पत्ति जातो जाता है, शरीर की उत्पत्ति जब होती है तब उसको हम कहते हैं जन्म, अब फिर हम जन्मदिन मनाते हैं, हमारे शांतिपनी में व्यक्त दिवस कहते थे, शरीर व्यक्त हुआ मैनिफेस्टेड, और फिर मरने के बाद अब व्यक्त हो गया। तो इसमें दोनों में फर्क क्या है? आप कहते हो शरीर का जन्म हुआ, आप उत्सव करते हो कोई, और वही शरीर जब जन्म होता है तो बहुत नाच गाना होता है, जब वही शरीर जब छूटता है तब रोते हैं, तब नहीं हंसता कोई, क्यों होता है वो हम बाद में देखेंगे। तो जो हम सांदीपनी में व्यक्त व्यक्त करते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस जो है वो रह जाता है, जो आत्म तत्व है वो रह गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। बदलाव किस में आया? मतलब बदलाव शरीर में आया, शरीर का जन्म हुआ और शरीर चला गया। शंकराचार्य जी कहते हैं, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म जन्मने वाला अर्थात लोक प्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीरों की प्रत्येक उत्पत्ति के साथ साथ उत्पन्न हुआ माने, या अनेक प्रत्येक विनाश के साथ साथ सदा नष्ट हुआ माने, अगर ऐसा भी तुम मानते हो कि शरीर के जन्म के साथ आत्मा का जन्म हो गया, शरीर के नष्ट होने से आत्मा नष्ट हो गई, फिर भी तो भी अर्थात ऐसे नित्य जन्मने और नित्य मरने वाले आत्मा के निमित्त भी हे महाबाहो तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है, शोक करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि जन्मने वाले का मरण और मरने वाले का जन्म यह दोनों ही अवश्य ही होने वाले हैं, ये दोनों के दोनों अवश्य होंगे। देखो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो हम देखते रहते हैं, निश्चित है। दुनिया की जितनी भी जितने प्रोड्यूस होते हैं, जो भी खाने की चीजें हैं, दवाइयां हैं, उनकी जन्म की तारीख लिखी रहती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, और उसके बाद में डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखी रहती है। तो हमारा भी डेट ऑफ बर्थ हम लोग को मालूम है, मगर डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं मालूम है, मगर एक्सपायरी निश्चित है। भगवान कहते हैं कि जिसकी मृत्यु है, मृत्यु के बाद जन्म भी है, बोले ये भी गारंटेड है। एक पार्ट हमको समझ में आता है, दिखाई पड़ता है, हम देखते हैं, जन्म हुआ मृत्यु हुई ये देखते हैं हम, मगर मृत्यु ही जन्म ये हमारे सामने नहीं आता है। मगर भगवान जब कहते हैं तो जरूर ठीक है, वो बहुत अच्छा। अपने आप पर लागू करो, अपने आप पर लागू करो, मतलब मेरा जन्म हुआ है, जन्म शरीर का हुआ है, शरीर जाएगा। और अर्जुन को यह निर्देश है, भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम जिनके बारे में सोच रहे हो जिनकी मृत्यु होगी, उनका भी यही होगा, मृत्यु के बाद में फिर जन्म होगा। अपने ऊपर भी लागू करो, दूसरों के ऊपर भी लागू करके देखो, ये जो धर्म जो नियम है ये बना हुआ है, ये चलता रहेगा। अच्छा, जीव भाव में भी शोक की निवृत्ति हो सकती है, ये महात्माओं का कथन है, ये आपको शंकराचार्य जी में भी नहीं बताया है। जीव भाव के अंदर भी शोक की निवृत्ति हो सकती है। कैसे शोक की निवृत्ति हो सकती है? कि आपने अभी भी जो दुख का अनुभव आपको होता है उसको आपने ठीक से समझा नहीं है। दुख का कारण क्या है, शोक का कारण क्या है, केवल दो वर्डों में बताइए, शंकराचार्य जी ने आगे बताया था, केवल दो वर्ड के अंदर शंकराचार्य जी ने कह दिया आपका दुख का कारण यह है, मैं और मेरा। याद है आपको, आपका सब दुखों का कारण जो है मैं और मेरा, मेरा आपको सीमित कर देता है। ममत्व, जहां जहां ममत्व आ गया ना, वो आपको सीमित कर देता है। इसी का नाम है अर्जुन रोग। ये अर्जुन रोग आज तक चला आ रहा है, मैं और मेरा हमारे साथ भी लगा हुआ है ये रोग, हम सब हम ग्रस्त हैं इस रोग से, मैं और मेरा। महात्मा लोग कहते हैं कि आपने संबंध को ठीक से समझा नहीं, मैं और मेरा जो है ये एक संबंध है, आपने इस संबंध के बारे में ठीक से विचार नहीं किया। क्या ठीक से विचार नहीं किया? देखो आपको वो दो तीन एग्जाम्पल महात्मा लोग देते हैं। एक तो बोलते हैं कि आपके सहयात्री हैं, सहयात्री, आप ट्रेन वगैरह में जा रहे हो, एरोप्लेन में जा रहे हो। आजकल तो खैर माहौल दूसरा हो गया, लोग बात भी नहीं करते हैं, वो ये किसको ये निकाल लेते हैं उसी में कुछ करते रहते हैं। एयरपोर्ट पर देख लो, सबके माथे नीचे ऐसे कोई सीधा नहीं देखता है, और हम देखते रहते सबको क्या कर रहे हैं, बोले सब लगे हुए इसके अंदर पता नहीं क्या करते रहते हैं। आगे लोग क्या करते थे, आगे ट्रेन में जब सफर करते थे ना, तो लोग जो है आपस में बात करते थे, आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जाओगे, फिर उसके हिसाब से, फिर जब जैसे जैसे चाय पानी का टाइम आता था, खाने पीने का टाइम आता था, तो हम लोग एक्सचेंज करते थे, आजकल नहीं करते, आजकल लोग को डरा दिया गया है, पता नहीं वो दूसरा वाला क्या बीज माल डाल देगा और आप सो जाओगे, आपका सामान लेके चला जाएगा। अब आजकल इंडिया में भी ट्रेन में कोई नहीं खाते एक दूसरे का, तो आगे के लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। फिर उसके बाद में आपने टेलीफोन नंबर लिया, उनका ये लिया वो लिया, और आपकी यात्रा बातचीत करते करते सुखद रूप से कट गई। अब वो सज्जन जो हैं आपके सहयात्री अपने स्टेशन पर उतर गए, आपको दुख होता है क्या? नहीं होता, कभी नहीं होता दुख। आगे के जमाने में, अभी तो होटल कहते हैं, आगे उसको सराय कहते थे, लोग सराय में जाके रहते थे, धर्मशाला में जाके रहते थे, और एक जगह बैठ के खाना खाते थे, फिर पूछते थे कहाँ से आप आए हो, कहाँ से आप आए हो, कहाँ, थोड़ी बातचीत की और दूसरे दिन सवेरे सब अपने अपने दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दिए, दुख नहीं होता था। अगर रेल की यात्रा के संबंध को आप अगर समझ पाए हो, तो वो संबंध आपका 24 घंटे का था, यहां पर संबंध आपके सारे जीवन का है, 100 वर्ष का है। पति पत्नी का संबंध आपके जन्म के साथ तो नहीं हो गया था, आप 20-25 साल के बड़े हो गए तब आप जो है पति पत्नी बने, उसके पहले आपको पता था कौन हमारा पति होगा कौन हमारी पत्नी होगी? नहीं पता था। तो ये संबंध भी आप सहयात्री की तरह क्यों नहीं सोचते हो कि ये हमारे सहयात्री हैं, केवल इस जीवन में हमारे साथ हैं? आप बता सकते हो कि आप कोई भी बता सकते हो कि इनके पहले जीवन में ये कहां थे और मैं कहां था? इनसे पूछो आप कहां थे, ये भी नहीं बता पाएंगे। मैं कहां था, मैं भी बता पाऊंगा। हमारे जो पूर्वज जो चले गए हैं कहां चले गए हैं पता है हमें? नहीं पता है। जीव कहां से आया कहां चला गया? तो ये जीव जो है एक साथ चल रहा है, बस दैट्स ऑल। सहयात्री की तरह इसको समझो। सहयात्री का मतलब ये यात्रा को सुखद करो, एक साथ जो है ग्रो करो, ये इसके पीछे भाव होना चाहिए। ठाकुर रामकृष्ण से किसी ने पूछा था, उन्होंने कहा मां बाप भाई बहन पति पत्नी सबकी सेवा करो मगर मन ही मन जानो ये तुम्हारे कोई नहीं है। संबंध भूजे चने की तरह हो जाना चाहिए, संबंध है मगर हमको दुख नहीं देगा। कैसे होगा ये? इसी तरीके से होगा जैसे ठाकुर रामकृष्ण ने कहा, हमारी यात्रा सहयात्री की तरह यात्रा होनी चाहिए, हम अपने परिवार को एक साथ लेके चलेंगे। जीवन में उनको भी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी भी आध्यात्मिक उन्नति हो, सब एक साथ हम आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चों की भी आध्यात्मिक उन्नति हो, माता पिता की भी आध्यात्मिक उन्नति हो, वो है सहयात्री। और संबंध, क्या संबंध था आपके पीछे जन्म में किसी भी जीव का? किसी जीव के साथ कोई संबंध नहीं है, और इस शरीर के छूटने के बाद में फिर भी संबंध नहीं रहेगा, फिर क्यों मर रहे हो इस जीवन के संबंध को लेके? आगे संबंध नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, बीच में है। जिससे असली संबंध है उसको भूले बैठे हो। किससे असली संबंध है? उस भगवान से है जो आपके हर 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 आपके जब ने उपाधि ली है, जब जब आपने शरीर लिया है वो भगवान आपके साथ था। आप चींटी थे तब भी वो था, आप हाथी हुए तब भी था, आप अभी शरीर में हो, मनुष्य शरीर में हो, तब भी आपके साथ में है। और अगर इस जीवन में अगर आप उसको नहीं पा सके, अगले जीवन में भी अगर दूसरा जीवन लेना पड़ेगा तो भी वो आपके साथ रहेगा। भगवान ये कहना चाहते हैं कि अगर ये जीवन जा रहा है तो दूसरा जीवन जो है सुख वाला होने वाला है, ऐसी चिंता करो, क्यों रो रहे हो? बहुत खूब। तो हमें क्या करना चाहिए? तो महात्मा लोग कहते हैं सद्गुणी बनो। इस जीवन में हम क्या करें? बोले सद्गुणी बनो। बोले सद्गुण कहाँ लिखे हुए हैं? बोले गीता के चैप्टर 2 के अंदर में स्थित प्रज्ञ के लक्षण आने वाले हैं। तो वो तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, हम तो स्थित प्रज्ञ नहीं है, ज्ञानी के प्रश्न ये लक्षण है। तो महात्मा लोग कहते हैं सिद्धस्य लक्षणानि साधकस्य साधनानि। जो सिद्ध के लक्षण हैं उनको साधक को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो हमको वहां मिलेंगे। उसके बाद में चैप्टर 12 के अंदर भक्त के लक्षण भगवान ने बताए हैं गीता के अंदर में। चैप्टर 13 में ज्ञानी के लक्षण बताए हुए हैं। उसके बाद में चैप्टर 16 के अंदर दैवी लक्षण हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये सब लक्षण है, रामायण में मिलेंगे आपको लक्षण, भागवतम में लक्षण मिलेंगे। तो सद्गुणी बनो। महात्मा कहते हैं कि आपको इस जीवन के अंदर क्या करना है? सद्गुणी। क्यों गुण चाहिए हमें? क्या होगा गुण लेके? तो भगवान ने उन्हें कहा है कि भगवान ये कहते हैं 16वें अध्याय में कि अगर गुण को तुम अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हम नहीं गारंटी कर रहे हैं। किसने गारंटी दी है? भगवान कृष्ण ने। रिटर्न गारंटी है। दैवी संपत्ति विमोचाया, साफ लिखा हुआ है वहां पर। इसलिए जो आपको सद्गुणी बनो, सत्कर्मी बनो। सत्कर्मी कौन सा कर्म करें कि हम जिसको हम सत्कर्मी कह सकते हैं? तो भगवान यहां पर कहते हैं नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेपसुना कर्म यत सात्विकम उच्चते। सात्विक कर्म क्या है? नियतम, जो आपके कर्म है, नियत कर्म है, वो नियतम रोज अपने करते रहो। कैसे करो? संग रहितम। हमारे कर्म कैसे होते हैं? सब में जुड़ा हुआ, संग जुड़ा हुआ है, हमारा अपना इंटरेस्ट है। हमारे सारे कर्म हमारी ईगो की पूजा है, भगवान की पूजा नहीं है, हमारी ईगो की पूजा है। और अराग द्वेष कृतम, बिना राग और द्वेष के, बिना लाइक्स एंड डिसलाइक्स के वो आपको करना है। हम कैसे करते हैं? जो आपको पसंद है वो करेंगे, जो नहीं पसंद है नहीं करेंगे। अरागत है द्वेषता कृतम। अफल प्रेप सुना, फल की हम इच्छा नहीं करेंगे। कर्म करने के टाइम में हम कोई फल की आकांक्षा नहीं करेंगे। कर्म करने के पहले प्लानिंग पूरी कर लो, कितना प्रॉफिट चाहिए हमको, पूरी प्लानिंग कर लो। मगर जब कर्म शुरू किया, एट दैट टाइम डोंट थिंक अबाउट द फ्रूट ऑफ एक्शन। अगर उस टाइम में भी अगर आपने कर्म फल की चिंता शुरू कर दी, क्या होगा फिर? You are not going to put 100% of your mind. कुछ मन आपका, कुछ भाग जो है वो फल की चिंता करना शुरू कर दिया। आप मान लो यहां पर ज्वाइंट परीक्षा दे, तो हमारे इंडिया में कहते हैं ज्वाइंट परीक्षा, अगर आपको डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़नी है तो ज्वाइंट परीक्षा दो। अब परीक्षा में लिखते लिखते अगर आप ये सोचिए लोगों कितना परसेंट आएगा मेरा, क्या होगा, ये तो सवाल हुआ नहीं मेरे से। तो सम पार्ट ऑफ योर माइंड इज नॉट फुल्ली वर्किंग फॉर द एग्जामिनेशन। आप फल की चिंता कर रहे हो, 100% ऑफ माइंड इज नॉट पुट इन। फल आपको 100% मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कहते हैं अल्प अफल प्रेप सुना कर्म यत सात्विकम उच्चते। ये आपका सत्कर्म है, ऐसे आपको सत्कर्म करने चाहिए। सद्भक्त बनो। महात्मा कहेंगे कि आपको सद्भक्त बनना चाहिए, ये सब इस जीवन में करना है आपको। सद्भक्त बनो। कौन सा भक्त है, कैसे भक्ति करें? भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं कैसे भक्ति करनी है। 4 किस्म के 5 किस्म के उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, उसके हिसाब से आपको भक्ति करनी है। लोएस्ट भक्ति कर्मयोग से शुरू होती है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कर्मयोग आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं सात्विक कर्ता बनो और प्रसाद बुद्धि से फल को प्राप्त करो। तो सात्विक कर्ता क्या है? तो सात्विक कर्ता यहां पर 18वें अध्याय में 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं मुक्त संगो अहम बाधी धृति उत्साह समान्वित सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्चते मुक्त संग विदाउट अटैचमेंट अनहम बाधी अहम नहीं अहंकार भी नहीं है धृति उत्साह समन्वित है धृति फोर्टिट्यूड उत्साह आपके अंदर उत्साह काफी है सिद्धि असिद्धि निर्विकार है सिद्धि होगी कि नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ता असिद्धि है तब भी ठीक है लाभ है तब भी ठीक है नुकसान है तब भी ठीक है निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्चते उसको हम लोग सात्विक कर्ता कहते हैं और प्रसाद भुक्ति प्रसाद बुद्धि से आप फल को लो भोक्ता बनो ये सारा साइंस है ये साइंस को आप काट नहीं सकते अगर काट नहीं सकते हो तो इसको यहां खाली मत रखना अगर समझ में आ गया है तो फिर जीवन में उतारना पड़ेगा आपको लाभ अगर लेना है तो जीवन में उतारना पड़ेगा तभी आपको लाभ मिलेगा नहीं तो लाभ नहीं मिलने वाला नेक्स्ट
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः
ध्रुवं जन्म मृतस्य च
ध्रुवं जन्म मृतस्य च
तस्मात् अपरिहारेऽर्थे
तस्मात् अपरिहारेऽर्थे
न त्वं शोचितुमर्हसि
न त्वं शोचितुमर्हसि
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः जिसका जन्म हुआ है ध्रुव निश्चित है उसकी मृत्यु होगी ये पाठ हमको समझ में आता है ध्रुवम जन्म मृतस्य च जो मर गया बोल उसका जन्म जरूर होगा हम लोगों ने अपने BMI चार्ट में देखा हुआ है वासना अगर आपकी है तो आपका जन्म उस वासना के अनुसार आपका होगा तस्मात अपरियार्थ से न तुम सोचो तुम हर्षति इसलिए इसका तुम प्रतिकार कुछ मत करो ये होगा ये नियम आप बदल नहीं सकते इसलिए न तुम सोचो तुम हर्षति इसके विषय में शोक करना ठीक नहीं है आत्मा लेवल पर शोक करना ठीक नहीं है जीवात्मा के लेवल पर भी भगवान कहते हैं शोक करना किस लिए शोक करते हो भाई जिसकी मृत्यु होगा फिर जन्म होगा और जन्म के बाद फिर मृत्यु होगी ये तो यूनिवर्सल नियम है इसको एक्सेप्ट कर लो देखो जातस्य ध्रुवो मृत्यु ये तो प्रत्यक्ष है दिखाई पड़ता है एक महिला भगवान बुद्ध के पास में गई उसने अपने अपने एक अपने एक पुत्र का सब लेके गई कि भगवान बुद्ध आप तो रियलाइज्ड हो मेरा पुत्र मर गया है इसको जीवित करो अगर आप रियलाइज्ड हो तो इसको जीवित करो भगवान बुद्ध कहा हम जीवित कर देंगे मगर तुमको एक ऐसे परिवार से तिल लाना होगा जिस परिवार में कभी मृत्यु नहीं हुई है वो तिल लेके आओ वो तिल लेके मैं मंत्र पढ़ूंगा और मंत्र पढ़ के इसको ऊपर दे दूंगा तुम्हारा जो है पुत्र जीवित हो जाएगा वो महिला गई सारे गांव में घूमती रही किस घर में मृत्यु नहीं हुई है बताओ उस घर से हमको तिल चाहिए कोई घर वाला उसको तिल नहीं दे सका वापस आई वो समझ गई जातस्य ध्रुवो मृत्यु और वो स्त्री वो महिला जो है भगवान बुद्ध की पहली महिला शिष्य बनी तो इसको कोई रोक नहीं सकता मृत्यु निश्चित है महात्मा लोग तो कहते हैं ना बड़े अपने ढंग से कहते हैं आएंगे सो जाएंगे राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर आएंगे सो जाएंगे कौन कौन है? राजा, रंक, गरीब, फकीर। हम तो कहेंगे भगवान। जिस जिस भगवान ने शरीर का धारण किया है उसको भी छोड़ना पड़ा है। तो कैसे लोग जाते हैं? एक सिंहासन चढ़ी चले, बोले जब मरते हैं तो एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है। आपने कभी देखा किसी को सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं? संत लोग जाते हैं, उनकी जो है शरीर को कभी सुला के नहीं ले जाते हैं, वो चेयर पर एक बैठा के ले जाते हैं। एक सिंहासन चढ़ी चले और दूसरे बड़े जंजीर बांध के ले जाते हैं ना, कंधे पर चढ़ा के फिर उसको बांध देते कि उलट नहीं जाए। बांधे जंजीर, एम्बुलेंस वगैरह में क्या करते हैं? स्ट्रैप लगाते जंजीर लगा के चले जाते हैं। जंजीर कौन सी है हमारे पास? कौन सी जंजीर है? ये तो फिजिकल है, हमारी कौन सी जंजीर है? वासना। आपने वासना को अगर इस जीवन के अंदर खत्म नहीं किया तो ये वासना की जंजीर आपको फिर दूसरे जन्म में लेके जाएगी। और जिसने वासना की जंजीर को काट दिया यहां पर, वो सिंहासन पर चढ़ के जाता है, उसका दूसरा जन्म नहीं होता, बाकी सबका जन्म होता है। महात्मा कहते हैं देखो, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। माटी कहे कुमार से, कुमार जब बनाता है ना पॉट तो उसके पहले उस मिट्टी को उसको प्रिपेयर करना होता है, कितना पानी डाले और क्या क्या चीज डाले, फिर उसको वो पांव से रोंदता है, हाथ से तो नहीं कर सकता, पांव से उसको रोंदता है। तब माटी उससे कहती है, माटी कहे कुमार से, कुमार कौन है? पॉटर, पॉटर। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तुम भी मिट्टी बनोगे, जलने के बाद में तुम क्या बनोगे? मिट्टी। मेरे ही पास आओगे तुम। मैं अभी आगे कुछ कह रहा था ना आपको कि जब हमारा जन्म होता है तब हम बहुत उत्सव करते हैं, हंसते हैं, और जब वो शरीर जाता है तब उत्सव नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उसके साथ अटैच्ड हो, अटैच्ड हो। अब वो छूट गया, आप रो रहे हो, आपने संबंध गलत जोड़ा है। संबंध कैसा होना चाहिए था? संबंध ऐसा होना चाहिए था भूजा चना, संबंध ऐसा होना चाहिए था कि ये हमारे सहयात्री हैं, ये हमारा इस जीवन इनके साथ चलना है। एक एक जगह ऐसा भी उदाहरण आया है कि गंगा में दो तिनके बह जा रहे हैं, एक उधर से तिनका बह रहा है, एक इधर से बह रहा है, कुछ देर दोनों एक साथ आए, एक साथ कुछ देर तक ट्रेवल किए, फिर दोनों अलग हो गए। वैसा ही हमारा जीवन है, ये हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, सब वो तिनके इकट्ठे हुए हैं, एक साथ कुछ दूर तक जाएंगे, उसके बाद अब अलग हो जाएंगे। बोले संबंध को अच्छी तरह समझ लो, उसके हिसाब से तुम आगे बढ़ो। बनारस में एक कचौड़ी गली है, बनारस की गलियां बहुत छोटी छोटी हैं, और वो गली जो है वो बनारस के घाट, गंगा घाट पर जाती है। उस गंगा घाट पर सब जो है
मणिकर्णिका
घाट है, वहां मुर्दे जलाए जाते हैं। जलाने के बाद में जो कुछ बच जाता है ना, जितना कुछ भी आधा जला नहीं जला, उसको उठा के गंगा में फेंक देते। तो मुर्दे जो आते हैं उस कचौड़ी गली में, उस कचौड़ी गली की खासियत यह है कि वहां की मिठाई की दुकानें और कचौड़ी बहुत
बहुत अच्छी है,
बहुत अच्छी है। कचौड़ी गली, अच्छा लोग वहां खड़े होकर खाते हैं,
खाते
तो गली छोटी है, मुर्दा भी उधर से आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता, लोग अपना इंजॉय कर रहे। ये परम सत्य है, ये कब तक रहेगा भाई ये शरीर? बोले आपका प्रारब्ध खत्म होगा, शरीर जाएगा, जैसे ही प्रारब्ध खत्म होगा वैसे जाएगा। एक एक करके सब अपने अपने स्टेशन पर उतरते चले जाएंगे और कोई इसको रोक नहीं सकता। कठोपनिषद में आया है सस्य इव मर्त्यः पच्यते सस्य इव जायते पुनः। जैसे फसल फसल पैदा होती है फिर उसके बाद जो है वो नष्ट भी हो जाती है फिर मिट्टी में मिल जाती है। अन्न पृथ्वी से पैदा हुआ फिर पृथ्वी में चला जाता है। बोले इसी तरह से ये भी होता है। हमने यहां आके देखा तो हमको समझ में आ गया। आपको मालूम है ना पेरिनियल्स है ना, ठंड में क्या होता है, जैसे लगता है सब मर गए, सब काले 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 पेड़ की तरह नजर आते हैं, लगता है मर गए सब। वो हमारे विंडो के सामने एक वो फूल होते हैं, क्या उसको आप लोग नाम बताते हैं, कुछ नहीं होता है। फिर जब जैसे ही स्प्रिंग आया फिर से निकला। पेरिनियल्स की तरह बस उसी तरह हमारा जीवन भी है, एक के बाद एक होता जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, होगा ही होगा। कब तक होगा? जब तक वासना है तब तक होता रहेगा। उसके बाद भगवान कहते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मर गया उसका जन्म जरूर होगा। क्योंकि आप लोगों ने BMI चार्ट पढ़ लिया है इसलिए आप लोग अब मानते हो कि वासना अगर है तो उसका जन्म भी जरूर है। अच्छा, इस कानून के अंदर कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, पुनर्जन्म कैसे होता है? बोले वासना के अनुसार। थोड़ा सा आपको यहां और संशोधन कर दें, उपनिषद ने एक जगह लिखा है यथा श्रुतम यथा कर्म। अभी तक तो हम लोग वासना 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 करते थे, वहां पर एक वर्ड और जोड़ दिया गया यथा श्रुतम। जितना आपने अध्यात्म ज्ञान सुना है एक तो ये फैक्टर है, दूसरा जो कर्म किया है ये फैक्टर नंबर टू। ये दो टू फैक्टर के हिसाब से आपका जन्म होगा। अब आप लोग ये विचार कर लीजिए कि श्रुतम कितना इम्पोर्टेंट है अगले जीवन के लिए। या तो इस जीवन के अंदर ही वासना खत्म कर दीजिए सुन सुन कर, नंबर वन पॉसिबल है, और अगर नहीं कर पाए थोड़ा भी अगर श्रवण किया है उसका भी आपको फल मिलने वाला है, उसका भी फल आपको मिलेगा। कैसे बोलते हो, कुछ साइंस है उसके पीछे? बोला हाँ साइंस है। क्या जाता है इस शरीर से दूसरे शरीर में? सूक्ष्म शरीर जाता है। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या चीजें हैं? 17 आइटम है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। अगर ये 17 आइटम जाते हैं, मन बुद्धि भी जाता है साथ में, अगर हमने इस जीवन में थोड़ा सा सुन के उस मन को थोड़ा सा भी शुद्ध कर दिया है, आया साइंस समझ में? शरीर की शुद्धता तो रोज करते हैं हम, रोज नहाते हैं। मन की शुद्धता क्या किया आपने मन की शुद्धता के लिए? तो कुछ कुछ आपको सुनना होगा, श्रवण करना होगा। जितना आप श्रवण करेंगे मन शुद्ध होगा। देखो डाउट हो तो हमको अभी पूछना, हम अभी बताएंगे। मन शुद्ध करने का आपने क्या किया है बताओ हमें? मन शुद्ध कर्म योग से होगा, भक्ति योग से होगा, ध्यान योग से होगा। क्या करते हो आप? क्या कर्म योग किया आपने? क्या भक्ति की आपने? कुछ नहीं किया। करना चाहिए कि नहीं है डाउट आपको? करना चाहिए। यथाश्रुतम यथा कर्म आपका जो है गाइडिंग फोर्स है। भगवान कहते हैं ये ध्रुव है, ये अटल है, मृत्यु के बाद में आपका जन्म जरूर होगा। अच्छा समुद्र की लहरें देख लो, लहर आती है मर जाती है, दूसरी आती है मर जाती है, आती है जाती मर जाती है, मतलब क्या? पानी से लहर बनी, पानी में चली गई, फिर पानी से बनी, फिर पानी में चली गई, यही तो हो रहा। तो लहर के मरने के बाद में दूसरी लहर आती है कि नहीं आती है, जन्म हुआ कि नहीं, उसी तरीके से ये चलता रहेगा। तस्मात अपरिहार्थे। अच्छा साइंस में भी आप देखो ना, साइंस में कहते हैं, वो लोग कहते हैं ना एनर्जी का कभी लॉस नहीं होता, टोटल एनर्जी का कभी लॉस नहीं होता, खाली जब बदलते रहते हैं इसको, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी के अंदर बदलते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। हम लोग क्या ना अभी मिशन के अंदर पहली बार वहां पर एक आया रिसाइकिल बिन, पहले एक ही बिन हुआ करता था, अभी रिसाइकिल वाला आया है। तो उसमें क्या रिसाइकिल वाला है, उसमें हम डाल देते हैं सब सीसी बोतल जो कुछ है। अच्छा फिर वो दूसरा कुछ बन के आ जाएगा, मृत्यु के बाद फिर जन्म हुआ ना उसका, रिसाइकिल हुआ कि नहीं, हमारा भी रिसाइकिल होगा। बहुत अच्छा। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम इसको मान लो, ये कानून बदलता नहीं है, तुमने लोगों को मरते देखा है, मगर ये भी जान लो मृत्यु जो है दूसरे शरीर के अंदर सुख देने के लिए है, इसलिए इसको तुम मान लो। अच्छा मान लो अगर मृत्यु ना हो तो क्या होगा, हमारे हजार मां बाप होंगे, एक के ऊपर एक जनरेशन, थाउजेंड जनरेशन बैठी होगी, मृत्यु ना हो। पहले सोचते थे मरने के बाद में उनको बरी कर दो, अब तो सोचते हैं ऐसे बरी करते गए तो सारी जमीन ही खत्म हो जाएगी। अब तो क्रिश्चियन भी क्रिमेशन के लिए जाना शुरू कर दिए हैं। केवल एक व्यक्ति इसके अंदर जो है एक्सेप्शन है, वो कौन है, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का जो है फिर से जन्म नहीं होगा।
अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमध्यानि भारत, व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव, अव्यक्तनिधनान्येव, तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना, अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव, तत्र का परिदेवना।
अव्यक्त, अब भगवान जो है एक स्टेप और नीचे, भगवान ने कहा कि देखो आत्मा की दृष्टि से शोक नहीं बनता है, जीवात्मा की दृष्टि से भी शोक नहीं बनता है, अब बोलते हैं शरीर की दृष्टि से भी शोक नहीं बनता है, तत्र का परिदेवना, क्यों शोक करते हो इसके लिए, शरीर 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 क्या था, शरीर अव्यक्तादिनी, बोले पहले अव्यक्त था फिर व्यक्त हो गया, व्यक्त के बाद फिर क्या होता, अव्यक्त हो गया फिर व्यक्त होगा, तो ये तो रूल है चल रहा है, तो इसमें शोक की क्या दरकार है, कोई शोक की दरकार नहीं है। महात्मा लोग कहते हैं आपने बुदबुदा देखा, बुदबुदा पानी में कभी कभी उसके अंदर जो है थोड़ी सी हवा भर जाती है बुदबुदा, फिर वो साइन करता है, डांस करता है थोड़ा थोड़ा, फिर पट खत्म हो गया। वैसे ही हमारा जीवन है। अच्छा वैसे ही हमारे संबंध हैं, जितने हमारे संबंध हैं वो बुदबुदे की तरह हैं, ये सारे संबंध केवल इस जीवन काल के लिए हैं, ना आगे पिछले जन्म में हमारा कोई संबंध किसी के था, रियली स्पीकिंग जीवात्मा का किसी जीवात्मा कोई संबंध ही नहीं। अच्छा आत्मा का आत्मा के साथ संबंध होता है क्या, क्यों? आय एक है तो फिर संबंध कैसे होगा? संबंध नहीं बनता। तो बोले ये आपका शरीर बना किससे? बोले पंचमहाभूत से, भूतानी पंचभूत, पंचभूत से बना, व्यक्त होता है फिर पंचभूत में चला जाता है, यही तो हो रहा है। इतना ही होता है कि देखो अव्यक्त अवस्था के अंदर में शरीर ज्यादा समय तक रहता है, अव्यक्त स्थिति ज्यादा होती है, व्यक्त कम समय के लिए होती है। आपने एक जो है पॉट बनाया, एक घट बना लिया मिट्टी से, पहले ये घट मिट्टी में अव्यक्त था, अनमैनिफेस्ट फॉर्म में था, फिर व्यक्त हो गया, टूट गया, फिर अब कब बनेगा बाद में मालूम नहीं। तो अव्यक्त की जो है लंबाई जो है काफी है, कब व्यक्त बनेगा नहीं मालूम है, व्यक्त लिमिटेड पीरियड के लिए है। तो बोलते इसके लिए तुम्हें क्या चिंता करनी है? पृथ्वी से शरीर आया, पृथ्वी से ही उसका पोषण होता है अन्न से, और फिर पृथ्वी में चला जाता है। महात्मा लोग कई एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो एक कोई आदमी शूटिंग रेंज का नहीं ठीक बैठता है, एक आदमी अंधेरे से जो है एरो छोड़ता है और वो किसी प्रकाश से एरो होता हुआ फिर दूसरी तरफ चला जाता है, तो वो एरो क्या था? पहले अंधेरे में अव्यक्त था, प्रकाश में व्यक्त हुआ, फिर अव्यक्त हो गया। या मिट्टी का घट पहले अव्यक्त था, व्यक्त हुआ, फिर अव्यक्त हो गया। इसी तरह से रोज हम अव्यक्त में जाते हैं, व्यक्त होते हैं जागृत अवस्था में, सुषुप्ति में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। आपको दुख होता है क्या? रोज हम अव्यक्त में जाते हैं, अनमैनिफेस्ट फॉर्म में जाते हैं, जब आप सोए रहते हैं डीप स्लीप में, कुछ आपको भान रहता है क्या किसी चीज का? उसको अव्यक्त अवस्था कहते हैं। सवेरे जब हम उठते हैं व्यक्त हो गए, हमको दुख नहीं होता। भगवान कहते हैं अर्जुन इन सब कौरवों को हम अव्यक्त स्टेट में पहुंचा रहे हैं, अव्यक्त में भेजेंगे, क्योंकि अव्यक्त ही इनका घर है, अव्यक्त अवस्था में ही ज्यादा दिन रहना पड़ता है। तो घर जा रहे हैं अपने वापस, किस चीज का दुख? भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम जो है परिस्थिति का, बाहरी परिस्थिति का शिकार बन गए हो, तुमने ठीक से सोचा नहीं है। सबके जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां आती हैं, और प्रतिकूल स्थिति विकास का कारण होती है। प्रतिकूल स्थिति विकास का कारण होती है। हम आपको एक ऐसी घटना एक दोस्त की बताएंगे, रियल लाइफ स्टोरी। हमारे साथ ही एक लड़का पढ़ता था, हमारे साथ ही पास किया, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, हम भी बने। उसके बाद में उसने जो है नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया, तो उस समय के अंदर में 1960s के अंदर में इंडिया में फॉरेन कोलैबोरेटेड कंपनीज का जो है उसको बहुत ऊंचा माना जाता था कि अगर हमको इस कंपनी के अंदर नौकरी मिल जाए, वाह वाह वाह। तो एक ऐसी कंपनी थी डनलप, यहां भी होगी आपको मालूम, नाम सुना आप लोगों ने? तो डनलप कंपनी को उसने अप्लाई किया, बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। तो एक बार गया दोस्त वहां पर हमारा इंटरव्यू देने के लिए, दे के आया, मतलब कैसा हुआ? बोला इंटरव्यू अच्छा हुआ, हमने उसको सब समझा दिया, बोर्ड के ऊपर लिख के समझा दिया सब, एंड दे वेर ऑल हैप्पी। बोला वील कॉल यू फॉर द सेकंड इंटरव्यू। हाँ बढ़िया। सेकंड इंटरव्यू में गया, फिर वापस आया, हमने कहा कैसा हुआ? बोला अच्छा हुआ। बोला उन्होंने कहा है कि अब आपको एक कॉल आएगी, फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ डनलप कंपनी विल कॉल यू इन द हेड ऑफिस एंड ही विल गिव यू अपॉइंटमेंट लेटर। हमारा फिर तो बधाई हो। एक महीना बीत गया, अब चिट्ठी नहीं आए, तीसरी चिट्ठी। तो बेचारा चिंतित, रोज सवेरे शाम जाके लेटर बॉक्स देखे, चिट्ठी आई कि नहीं आई। फिर जहाँ इंटरव्यू हुआ था वहाँ पता लगाया, क्या हुआ भाई? बोला नहीं, हमने तो आपका ही नाम भेजा है वहाँ पर हेड ऑफिस में, उसके बाद क्या हुआ हमें तो मालूम नहीं है। अभी बेचारा परेशान, फिर डरते 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 वहाँ हेड ऑफिस में गया पूछने के लिए कि हमने ऐसा इंटरव्यू दिया था, क्या हुआ? वो कहते हैं आपके पास भेज दिया है और आप कुछ बता नहीं रहे हो। तो वहां पर उन्होंने कहा वो पोस्ट तो भर्ती हो गया। पोस्ट भर्ती हो गया? हाँ, कैसे हो गया? सिलेक्शन तो मेरा नाम सबसे पहले था वहां, हमारे दोस्त ने कहा। तो बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो प्रेसिडेंट से, डॉक्टर जाकिर हुसैन से कोई एक चिट्ठी लिखा के लेके आया था, तो उसको हमने दे दिया। अब ये जो हमारा मित्र बेचारा दुखी हो गया। प्रतिकूल स्थिति दुखी होने का कारण है। उसने कहा मेरा तो गॉडफादर है नहीं, हम क्या करें। उसके बाद की वो घटना हुई कि ये जो है उसने नौकरी की अब छोड़ ही दिया, भला हम नौकरी नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। और उसने प्रैक्टिस में काफी उन्नति की। उस उन्नति के दौरान में उसने देखा कि डनलप कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो गई, वहां पर वो बंद हो गई, डिजॉल्व हो गई। और उसके जो कर्मचारी थे, ये घटना करीबन 20 साल के बाद घटी है, और उसके जो वहां के कर्मचारी थे उन्होंने, कईयों ने जो है सुसाइड कर लिया, आत्महत्या, नौकरी नहीं मिलेगी। जो सीनियर पोजीशन में हो, रिटायरमेंट के स्टेज पर हो, क्या उसको नौकरी और मिलेगी? तो हमारा मित्र कहने लगा देखो, जिस टाइम हमको नौकरी नहीं मिली थी मैं बहुत दुखी हुआ था, और अब मैं जब पीछे ताक के देखता हूं तो भगवान ने हमको नहीं देखे। प्रतीको, आप अपने जीवन में पीछे झांक के देखेंगे तो आपको ऐसी स्थितियां मिलेंगी। भगवान ने कब कब आपको प्रतिकूल स्थिति में डाल के आपको बदलाव दे दिया, आपको मोड़ दे दिया, घुमा दिया। बहुत अच्छा। तो कहते हैं मनुष्य का देह जो है भोग करने के लिए नहीं है। महात्माओं की वाणी है कि मनुष्य का देह भोग करने के लिए नहीं है। मनुष्य का देह क्या है कि आप और जो है आगे बढ़ो, भक्ति बढ़ाओ। भक्ति जितना बढ़ाओगे उतनी जल्दी जल्दी आप भगवान की तरफ पहुंचोगे। बहुत लोग करते हैं, देखो जीवन लोग नष्ट कैसे करते हैं। हमको बॉडी बिल्डिंग के अंदर ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेना है, कर रहे हैं? कितने दिन परिश्रम करना होगा बॉडी बिल्डिंग गोल्ड मेडल के लिए? मिल गया आपको गोल्ड मेडल, आपको सीढ़ी पर खड़ा कर दिया, 1 2 3 गोल्ड मेडल पहला दिया आपको, दुनिया आपका नाम जान लेगी। आप उस स्टूल के ऊपर कितनी देर खड़े रहोगे?
2 मिनट।
उसके बाद
पकड़
गए। जीवन का आपने कितनी आयु खत्म कर दी उस चीज के लिए, शारीरिक फिजिकल के लिए। आपने मेंटल का क्या किया? मन के बारे में कुछ सोचा? तुम्हारे महात्मा कहते हैं इस किस्म से आप जो है समय को नष्ट नहीं करो, मन को ठीक करो, सूक्ष्म शरीर को सुधारो। अब भगवान कहने जाने हैं कि ये आत्मा जो है बहुत मुश्किल से इसको पकड़ा जा सकता है, दुर्बोध है, दुर्भाग्य है। कैसे ये दुर्बोध है? ए ब्यूटीफुल श्लोक इज कमिंग विच विल टेक अप इन आवर नेक्स्ट क्लास। आश्चर्य है ये।
Hari Om.